संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। धर्म भावना के अंतर्गत 12 व्रतों की चर्चा चल रही है, जिसमें 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत की चर्चा हुई। अब 4 शिक्षा व्रतों में सामयिक नाम के व्रत की चर्चा आरंभ हो चुकी है और पुरुष धूप वास नामक दूसरे शिक्षा व्रत की बात चल रही थी। इन व्रतों का नाम शिक्षा व्रत क्यों है? क्योंकि जो मुनि धर्म है उसको प्राप्त करने की प्रैक्टिस रूप यह है, इसलिए इन्हें बोलते हैं शिक्षा व्रत। तो इसका दूसरा है, पहला है सामायिक और दूसरा है पुरुष धूप वास। सामायिक तो मूल धर्म है ही, आत्मा के ध्यान का नाम ही वास्तव में सामायिक है और आत्मा के ध्यान का नाम ही वास्तव में धर्म है। ध्यान ज्ञान के बिना होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान के रिपीटेशन का नाम ही तो ध्यान है। जब हम कहते हैं किसी चीज का ध्यान रखो तो उसका यही अर्थ तो होता है ना कि किसी वस्तु को लगातार जानते रहो। जानना है ज्ञान और लगातार जानना है ध्यान। देखना है दर्शन और लगातार देखना है ध्यान। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखना है दर्शन और जानना है ज्ञान, और अपने ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को लगातार देखते जानते रहने का नाम ही ध्यान है। इसलिए ध्यान दर्शन और ज्ञान पूर्वक होता है, और सरल भाषा में हम कहें तो ज्ञान के रिपीटेशन का नाम ही ध्यान है। सामयिक में समय माने आत्मा और उस संबंधी जो चिंतन है, विचार है, ध्यान है, उसका नाम है सामयिक। इसलिए सब धर्मों में ये महान धर्म है, क्योंकि गृहस्थ एक ऐसा प्राणी है कि जिसे अपनी सारी आजीविका आदि कार्य स्वयं करना पड़ते हैं। न केवल उसे बनाकर खाना पड़ता है बल्कि कमा करके भी खाना पड़ता है, और अभी वो 5 इंद्रियों के विषयों का ऐसा त्यागी नहीं हुआ है कि इस भोग सामग्री को पूरी तरह तिलांजलि दे सके, और ये भोग सामग्री परिग्रह के रूप में उसके सामने इकट्ठी होती है तो उसे जोड़ना और संभालना ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उसके जीवन में कायम रहती हैं, और इसकी वजह से वो 24 घंटा सामायिक नहीं कर सकता। क्योंकि सामायिक धर्म है तो वो अधिक से अधिक समय सामायिक में निकाल सके, तो रोजाना सुबह 2 घड़ी, दोपहर में 2 घड़ी और शाम को 2 घड़ी तो करता ही है, लेकिन इतने से उसे संतोष नहीं है, इसलिए वो चाहता है इसे बढ़ाना। तो हम जैसे लोक में कहते हैं ना कि भाई 1 सप्ताह में तो हमें अपने काम से छुट्टी रखना चाहिए, और व्यापारी लोग अपना व्यापार बंद रखते हैं, नौकरी पेशा वालों को भी सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। तो वो ये कहता है कि सामान्य गृहस्थ को भी कम से कम महीने में 4 दिन माने सप्ताह में 1 दिन पूरे इन कामों से निवृत्ति मिलनी चाहिए, कमाने से, खाने से, बनाने से, यहां तक कि नहाने धोने से भी। और इन सब से निवृत्ति तभी मिल सकती है कि वो उस दिन सारी भोग सामग्री का त्याग करे, ना अकेला खाने पीने का, श्रृंगार का और सब चीजों का,
जब इन चीजों का वो त्याग करेगा एक दिन के लिए 48 घंटे के लिए, जैसा कि कल बताया था कि अष्टमी का उपवास और सप्तमी और नौमी का एकासन, ऐसे 48 घंटे बीत जाते हैं तब एक पुरुष दो उपवास होता है, तो इतने काल के लिए तो 7 दिन में 48 घंटे में 2 दिन हो गए ना, जैसे अमेरिका में 2 दिन छुट्टी होती ना, सैटरडे संडे 5 दिन काम करो 2 दिन छुट्टी। तो हमारा जैन धर्म कहता है 5 दिन आप गृहस्थी के काम करो, आरंभ करो, उद्योग करो, जो भी करना है करो, और 2 दिन पूरी तरह से धर्म को रखो। और धर्म को तभी रखा जा सकता है कि जब 2 दिन जब हम भोग नहीं करेंगे तो भोग सामग्री नहीं चाहिए, कमाना धमाना बनाना का चक्कर से बचें। तुम 24 घंटे अपने आत्मा के ध्यान में लगा सकते हैं, यद्यपि 24 घंटे कोई आत्मा का ध्यान नहीं रहता है, फिर भी उसने अधिक से अधिक समय हम सामायिक में बिता सकें, इसके लिए उसने अपने सारे आरंभ परिग्रह से 48 घंटे के लिए अपने को बिल्कुल अलग कर दिया है। उसका नाम है पुरुष दो बास। पुरुष दो बास का वास्तविक अर्थ तो ये था, लेकिन आज इसकी क्या स्थिति हो गई है कि हमें आज खाना भी नहीं है, नहाना भी नहीं है, तो फिर हमको सुबह से शाम तक दुकान पे बैठे रहेंगे, नहीं तो बीच में एक घंटे घर का जाना पड़ता था खाने के लिए, क्यों सुबह शाम जाना पड़ता था, और हम और 8 घंटे की जगह 12 घंटे दुकान में काम करेंगे, इसके लिए हमने खाना नहीं छोड़ा था क्या? कि 48 घंटे हम कैसे बिताएं तो ताश खेलने लग जाएं, अथवा और प्रमाद में काल गमाएं, और किसी दूसरे तरह के मनोरंजन करने लग जाएं, घूमने फिरने निकल जाएं, टीवी के सामने बैठ जाएं, इसके लिए हमने ये 48 घंटे नहीं निकाले थे। लेकिन हमें जो आत्मा के ज्ञान और ध्यान के लिए, अध्ययन के लिए, मनन के लिए, चिंतन के लिए, गृहस्थी के कामों की वजह से जो समय नहीं मिलता था, हमने भोजन त्यागने की कीमत पर इनको निकाला है आत्मा के कल्याण के लिए। जो समय का काल 2-2 घड़ी है वो तो निभाएंगे ही, और भी उससे अधिक हम सामायिक कर सकें तो करें, नहीं तो अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, स्वाध्याय करें। इसका ऐसा अर्थ भी नहीं है जो बहुत से लोग करते हैं, वे हम घर का काम तो सब छोड़ दिया, लेकिन ये 2 दिन हमारे लिए पूरे अवकाश मिल गया तो मंदिर की पूरी सफाई कर दें, सारी किताबें उठाकर उनकी झाड़ा फूंकी शुरू कर दें, क्यों कहीं ना कहीं तो हमारे काम करने की जो आदत है ना, अपने घर में रहते थे तो घर की रोकड़ रखते थे, तो घर का काम छोड़कर त्यागी बन गए तो समाज की संस्थाओं की रोकड़ लिखने लग गए, क्योंकि वो रोकड़ लिखना नहीं छूटती है, वो जिंदगी भर का जो अभ्यास है ना, वहां ऐसी योजनाएं बनाते थे जिससे कमाई हो, यहां ऐसी योजनाएं बनाने लग गए जिससे कि संस्था के लिए पैसा आए, कोई ना कोई योजना खड़ी कर देना समाज के लिए बल पर। तो इसका नाम वास्तविक पुरुष दो बास नहीं है। हमने आत्मा के चिंतन मनन के लिए, उसके निर्णय करने के लिए, उसी में जमे रहने के लिए ये समय निकाला है, और पूरी तरह हम उसमें ही अपने समय को इन्वॉल्व करें, यहाँ तक कि लेटे आंखें बंद करके लेटे रहकर प्रमाद से काल गंवाएं, बल्कि खाने से नींद आती है तो हम नहीं खाएंगे तो नींद नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से इसका नाम है पुरुष दो बास। फिर इसके बाद में आता है भोगोपभोग परिमाण वृत। ये क्या है भोगोपभोग परिमाण वृत? कहते हैं हमने एक पहले परिग्रह परिमाण वृत लिया था, कहा में 5 अणुवृतों में, कि हम जीवन पर्यंत इतने से ज्यादा परिग्रह नहीं रखेंगे। बाह्य परिग्रह की बात है, अंतरंग परिग्रह तो जो दूसरी प्रतिमाधारी है उसके मिथ्यात्व नामक अंतरंग परिग्रह, तानबंदी नाम के क्रोधमान मायालोभ और अप्रत्याखाना वर्ण के क्रोधमान मायालोभ और इनसे संबंधित हास्यादिक गए हैं, वो तो शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन बाई में धन धान धन माने रुपया पैसा सोना चांदी, धन माने अनाज सोना चांदी बर्तन भाड़े खेत मकान, जो हमारी दैनिक आवश्यकता की चीजें हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता है, उन वस्तुओं को आवश्यकता के अनुसार एक सीमा हमने बना ली है उतने ही रखना, उसका नाम है परिग्रह परिमाण अनुवृत्त। अब जो चीजें हमने रखी है ना इसमें परिग्रह परिमाण अनुवृत्त में, तो कहते हैं कि वास्तव में तो हमको एक भी चीज रखनी नहीं चाहिए थी, मुनि धर्म तो उसे ही कहते हैं ना। तो इन रखी हुई चीजों में भी और घड़ी घंटा दिन के धाम से नियम के रूप में प्रतिज्ञा करना, पहले बताया था यम माने जिंदगी भर के लिए त्याग करना, तो ये परिग्रह परिमाणानुवृत्त तो हमने जिंदगी भर के लिए त्याग किया। और ये भोगो भोग परिमाण क्या है कि घड़ी घंटा दिन महीने के हिसाब से जैसे दिग्वृत्त देशवृत्त लिए थे ना, तो जो भोग और उपभोग सामग्री हमने अपने पास रखी है उसका घड़ी घंटा दिन की मर्यादा से और उसका भी त्याग करना, उसमें भी परिमाण बनाना कि हम कितना रखेंगे कितना नहीं रखेंगे, उसका नाम है भोगोपभोग परिमाण। ये भोगोपभोग क्या है? भोग माने जो वस्तु एक बार भोगने में आए उस वस्तु को बोलते हैं भोग्य वस्तु, भोग वस्तु, वो भोग है। जैसे अपन रोटी खाते हैं तो रोटी में बार बार खाने में तो नहीं आएगी ना, है ना? और एक ऐसी वस्तुएं हैं कि जो बार बार हमारे उपयोग में आती हैं, जैसे पलंग है, ये कपड़े हैं हम रोजाना पहनते हैं, तो जो वस्तु एक बार उपयोग में आए उसे बोलते हैं भोग, और जो बार बार उपयोग में आए उसे बोलते हैं उपभोग। पहले मैंने एक दफे बताया था शायद कि वृक्ष में और पौधे में क्या फर्क है। बहुत से लोग समझते हैं कि जो छोटा होता है उसे पौधा कहते हैं और जो बड़ा होता है उसे पेड़ कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। तो क्या सही है कि जो एक बार फल दे और उसके बाद वो खत्म हो जाए मर जाए उसका नाम है पौधा, और जो बार बार फल दे प्रतिवर्ष ऋतु पर फल दे उसका नाम है वृक्ष पेड़। पेड़ और पौधे में अंतर छोटे बड़े का नहीं बल्कि एक बार फल देने में और बार बार फल देने में है। ऐसे ही भोग और उपभोग में अंतर है। जो एक बार भोगने में आए उसका नाम है भोग, और उसका जो बार बार भोगने में आए उसका नाम है उपभोग। देखिए अपने पानी का जो मिट्टी का कुल्हड़ होता है ना, वो एक दफे काम में लिया और फेंक दिया तो वो भोग कहलाया, और स्टील का गिलास है अपन रोजाना पानी पीते हैं फिर धो के रख देते हैं मांज के रख देते हैं फिर पीते हैं, वो हो गया गिलास हो गया उपभोग। ये आज के प्लास्टिक के गिलास आने लग गए हैं क्या, जो वो एक दफे भी काम आते हैं फिर फेंक देते हैं। तो ऐसी हमारी जो भोगो भोग सामग्री है उसको यहां दो भागों में बांटा, एक भोग और एक उपभोग। वो जो परिग्रह में और भोग उपभोग में क्या फर्क है? परिग्रह तो वो रुपया पैसा भी है, ये भोग उपभोग में रुपया पैसा नहीं आएगा, वो वस्तु ही डायरेक्ट जो हमारे भोगने में आती है, ख्याल में ना। तो कहते हैं उसमें भी हम परिमाण करें, जो परिग्रह परिमाण में पहले हमने मर्यादा बनाई थी कि जिंदगी भर हम इतने चीजों से ज्यादा नहीं रखेंगे, तो फिर उसमें भी हम परिमाण करें क्या कि हम इतनी ही इसका उपयोग करेंगे। देखो पहले अपन ने क्या किया था कि पांच अनुवृत्त में परिग्रह परिमाण अनुवृत्त में भोग सामग्री सीमित की, फिर देख वृत्त में फिर उसको और मर्यादित किया, हम बिना प्रयोजन उसका उपयोग नहीं करेंगे। यहां तक आ गए थे ना। तो अनुवृत्तों में तो हमने परिग्रह का परिमाण किया और गुणवृत्तों में व्यर्थ के परिग्रह का त्याग किया, अनर्थ दंड वृत्त है ना, व्यर्थ के पाप का हमने त्याग किया। और अब उसके अंदर क्या बचे कि जो व्यर्थ का नहीं हमारे ही काम का है, हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, तो कहते उसमें भी अब फिर परिमाण और करा। क्या तो बांध रहे ना धीरे 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 धीरे, हमारे जीवन को कोई खतरा नहीं हो और देने के भोग भोग की वस्तुओं के बिना हम आकुलित ना हो जाएं, हमारा स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रहे, इसके लिए मर्यादाएं बनाई गई हैं। कितनी वैज्ञानिक है क्या। जैसे परिग्रह परमाणु व्रत में अपन ने एक मकान रखा था कि हम 10 क्विंटल गेहूं रखेंगे, इतनी दाल रखेंगे, ऐसा हमने बड़ा बड़ा परिमाण किया था ना। फिर हमने अनर्थ दंड व्रत में जिससे बिना प्रयोजन की चीजों का हमने अब संग्रह जो परिग्रह परमाणु के भीतर भी आता था उसमें भी हमने उसे सीमित किया था ना, और अब उसमें भी सीमित में सीमित जो अर्थदंड था, ख्याल में है ना, तो हमने उसमें भी उसको और सुनिश्चित किया। जैसे आपने दूध रखा था कि हम दूध पिएंगे, क्यों अब आपने कहा हम तो बस रोजाना आधा किलो दूध पीते थे और अब आपने कह दिया हम तो एक ही पाव दूध पिएंगे। आप समझ गए ना, अभी माने जो चीज हमने ऐसी रखी थी कि हमारी भूमिका में त्यागने योग्य नहीं है और उसके उतने ग्रहण करने से हमें कोई दिक्कत पैदा नहीं होती थी, धर्म में भी धर्म की मर्यादा में भी कोई भंग नहीं होता था, पर अपनी स्वयं की इच्छा से क्या हमने उसको और सीमित कर दिया। कम से कम 4 दालें रखी थी, तो कह नहीं हम तो एक दिन में एक ही दाल का उपयोग करेंगे, 4 का नहीं करेंगे। हमने 10 सब्जियां रखी हैं लेकिन एक दिन में एक ही सब्जी लेंगे, 10 का उपयोग नहीं करेंगे। तो ऐसी ही हर चीज में जो अपनी भोगो भोग सामग्री है काल की मर्यादा ले लेकर और उसमें और सीमित अपने को करना, उसका नाम है भोगोपभोग परिमाण। उन वस्तुओं में भी और मर्यादा को सीमित करना। फिर है अतिथि सम विभाग वृत्त। ये क्या है अतिथि माने क्या, तिथि माने तारीख, डेट नक्की होती ना उसे बोलते तिथि। तो जिस आदमी की आने की डेट नक्की हो तो वो अतिथि नहीं है, वो तो तिथि है। अतिथि माने जिसके आने जाने की कोई डेट नक्की नहीं हो, अचानक आ जाए, उसका नाम है अतिथि। ये जो अपन बोलते हैं ना कि हमारे यहां 4 मेहमान आए हैं, 4 अतिथि आए हैं, ये वास्तव में अतिथि थोड़ी हैं। इनके तो पहले महीना भर पहले खबर आ गई थी फलां गाड़ी से पहुंच रहे हैं, वहां लेने के लिए आ जाना, भेज देना सामान देना। अतिथि कहां है, तिथि नक्की है क्या। बिना प्लानिंग के जो आ जाए, देखिए वो बिना प्लानिंग के जो अव्यवस्थित ग्रस्त हैं जो उनकी बात नहीं है, जो साधु है ना उनकी कोई तिथि नक्की नहीं होती कि किस तारीख को कहां जाएंगे क्या, पहले से कुछ नक्की नहीं करते हैं। देखो हमारे यहां 4 आदमी भोजन करेंगे तो 4 आदमी के हिसाब से हम भोजन सुबह बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अपने भोजनालय का भी नियम है ना कि जिसको भोजनालय में भोजन करना हो बाहर के आए हुए लोगों को, वो 4 घंटे या 6 घंटे पहले सूचना दे दें तो उनके लिए भोजन बनाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो वे कोई अतिथि नहीं है क्या? लेकिन जो पहले से नक्की नहीं करते और अचानक आ धमकते हैं, ऐसे अव्यवस्थित ग्रस्तों की यह बात नहीं है। लेकिन जो साधु संत हमारे मुनिराज हैं, उनके लिए यह नियम है कि वे कहीं किसी के यहां ये नक्की नहीं करें कि हम आज तुम्हारे यहां जिमने आएंगे, निमंत्रण से नहीं जाएं। वे हैं अतिथि। जो निमंत्रण से जाएं वो अतिथि नहीं है क्या? क्योंकि उसके लिए प्लानिंग होगी तो उनका वो उद्दिष्ट आहार हो जाएगा। उद्दिष्ट आहार का मतलब होता है कि उनके उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन। तो उनके उद्देश्य से यदि हम भोजन बनाएंगे तो जिसके उद्देश्य से बनाएंगे थोड़ा पाप का भागी वो भी उसमें होगा। इसलिए जो हमारे साधु हैं, मुनिराज हैं, ऐसी जगह आहार नहीं लेते हैं कि जहां उन्हें पता लग जाए कि ये हमारे उद्देश्य से बनाया गया है क्या? तो उन मुनिराजों को बोलते हैं अतिथि क्या? कि जो अचानक हम पड़गाएं और आ जाएं, पहले से जिनका नक्की नहीं होता, हम दरवाजे पर खड़े हैं उन्हें पड़गाने के लिए और वे आएंगे कि नहीं आएंगे ये नक्की नहीं है, बस आ जाएं तब की बात नक्की समझना। तो उन्हें बोलते हैं अतिथि। असली अतिथि कौन है? वे मुनिराज जो बिना निमंत्रण के आते हैं। अब कहते अतिथि और संविभाग कि जो हमने अपने लिए भोजन बनाया है क्या, उसमें से कुछ हिस्सा उन अतिथियों को निकाल करके उन्हें भोजन कराना, उसका नाम है अतिथि संविभाग वृत। यदि हमने अपने लिए जितनी भोजन सामग्री बनाई है और दो मेहमानों के लिए ज्यादा बनाई तो वो अतिथि संविभाग वृत नहीं है क्या? कि हमने अपने लिए ही बनाई है और उसमें से उतना हिस्सा उनको भोजन कराना तो ठीक है, बाद में अपन अपने लिए और बना लेंगे कि नहीं नहीं तो नहीं, वो बात वही हो गई समझे। उतना हिस्सा मुनिराज को करा के और फिर उतना अपना पेट खाली रख ले और उतने से ही काम चला जो बनाई थी तो वो अतिथि संभवाग देता है। कौन जानता है बोले इसको? क्यों? क्योंकि अपना अपने लिए बनाई थी वो तुम्हें खिला दी और फिर अपने लिए द्वारा बनाई तो उसका अर्थ क्या हो गया? कि वो उद्दिष्ट ही हो गया ना, पहले उनके उद्देश्य से बनाया था और अब बाद में उनके उद्देश्य से ही खत्म हो गया तो हमने बना लिया। वो ऐसा समझिए ना, अपना अपने अपन टिफिन लेकर के चले और दिल्ली जा रहे थे, बम्बई जा रहे थे ट्रेन में, दो आदमी थे, दो आदमी के लिए टिफिन लेकर के गए। अब वहां एक आदमी ऐसा आ गया उसके पास भोजन नहीं था, अब वो भी बाजार का खाता नहीं था, तो अपन कहते हैं ना क्या हो भाई साहब, कनी साहब आपका तो आपसे अकेले है, हमारे लिए नहीं, नहीं कोई बात नहीं है, उसमें क्या है, दो के तीन जने खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, हमारे अब नया तो नहीं बनेगा ना, समझ गए ना। हम चार चार रोटी खाते थे तो तीन तीन खाएंगे तो एक कम नहीं खाएंगे। अपने वो भोगो भोग जो रखा था, परिमाण किया था ना, भोगो भोग का जो परिमाण किया था उसमें भी कुछ हिस्सा अतिथि को दे देना। एक के बाद एक वैज्ञानिक है क्या? देखो अब सामायिक था पहले, तो सामायिक में तो हमने क्या किया है, भोजन का त्याग ही कर दिया। ऐसा थोड़ी कि आत्मा का ध्यान करते करते खाते खाते होगा, खाते रहेंगे आत्मा का ध्यान होगा, बिल्कुल त्याग हो गया ना। फिर 48 घंटे का मामला आया पुरुषोपवास, तो हमने भोगो भोग सामग्री का पूरा त्याग कर दिया, स्वाध्याय आदि चिंतन मनन में ही अपना दिन गमाया। तो 48 घंटे को पूरी भोग सामग्री का त्याग किया। अब जिस दिन वो भोगो भोग सामग्री ने हमने उपयोग किया, जो हमने रखी थी और जो हमारी भूमिका के लिए उचित थी, ख्याल में आया ना, तो उसमें भी और फिर परिमाण करना, कभी इतना नहीं इतना, बस इतना नहीं इतना, इतना नहीं इतना, उसका नाम है भोगो भोग परिमाण। और जो हमने भोगो भोग परिमाण किया उसमें एक हिस्सा अतिथि को दे देना, उसका नाम है अतिथि संविभाग। तो रह गए ना आधे पेट खाली पेट। तो कहते फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारा, तो फिर वजन कम हो जाएगा, हो जाएगा तो अच्छा है। कल अखबार में आया था, मैंने पढ़ा है कि 30% जो अपने भोजन को कम करेंगे, ख्याल में है ना, वो 30 वर्ष तक ज्यादा जिंदा रहे, 30% उनकी जिंदगी बढ़ जाएगी। अब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन कहने का मतलब स्वास्थ्य के लिए वो हानिकर नहीं है। ऐसे इस व्रत को बोलते अतिथि संभवाग व्रत। तो ऐसे चार शिक्षा व्रत हुए, इनकी कुछ और विशेषताएं हैं जिन्हें हम अगले व्याख्यान में बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।